सोचिए एक ऐसी फैमिली जिसे ईश्वर ने एक महान देश बनाने के लिए चुना हो, एक पूरी सिविलाइजेशन की नींव रखने के लिए।
बिल्कुल, एक बहुत बड़ा डिवाइन प्लान।
सही कहा, लेकिन वही फैमिली अचानक से एक दिन अपने सबसे पवित्र धार्मिक प्रतीक को, अपने सबसे सेक्रेट सिंबल को एक पूरे शहर का मास मर्डर करने के लिए वेपनाइज कर दे।
हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है।
एग्जैक्टली। आज हम जेनेसिस के उस डार्क चैप्टर को खोलने वाले हैं जहाँ डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन भी फेल हो जाती है, जहाँ सब कुछ इतना धुंधला और नैतिक रूप से गिरा हुआ है कि समझ नहीं आता ये हीरोज की कहानी है या विलन्स की।
ये सच में ह्यूमन साइकोलॉजी और थियोलॉजी का एक बहुत डीप इंटरसेक्शन है।
हाँ, तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हम जेनेसिस के अध्याय 34 से लेकर 37.1 पर फोकस कर रहे हैं।
राइट।
और जो सोर्स मटेरियल हम आज यूज कर रहे हैं वो डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज का जेनेसिस पर दिया गया सेशन बेस्ड का व्याख्यान है।
सही है, और डॉक्टर मैथ्यूज का एनालिसिस यहाँ बहुत शार्प है।
सही कहा। इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि जब इंसान मॉरल रूप से पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाता है, तब दिव्य योजनाएं आगे कैसे बढ़ती हैं। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि ये चर्चा उन सभी के लिए क्रूशियल है जो समझना चाहते हैं कि एक्सट्रीम करप्शन और फैमिली ब्रेकडाउन के बीच में भी उम्मीद कैसे सर्वाइव करती है।
और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये प्राचीन टेक्स्ट सिर्फ मिट्टी में दबे हुए इतिहास के पन्ने में ही है।
हाँ, उनका कोई मॉडर्न रेलेवेंस भी तो होगा।
बिल्कुल, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक बहुत बड़ा कॉमेंट्री है। इन चैप्टर्स में हम देखते हैं कि ईश्वरीय विश्वसनीयता या डिवाइन फेथफुलनेस कितनी स्टबर्न होती है।
स्टबर्न, वो कैसे?
एक ऐसी स्थिति जहाँ जेकब का पूरा परिवार एक फ्री फॉल में है, उनका मॉरल कंपस पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन फिर भी एक लार्जर प्लान उनकी इस भयानक फेलियर्स के बीच से अपना रास्ता निकाल रहा है।
वाओ।
हाँ, हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात नहीं करेंगे बल्कि उस मैकेनिज्म को समझेंगे कि आखिर ये पतन शुरू कहाँ से हुआ।
तो इस पतन की शुरुआत होती है शांति के एक भ्रम से, इल्यूजन ऑफ पीस।
सही कहा।
अगर हम नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट को देखें तो जेकब ने अभी अभी एक लंबा एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल खत्म किया है।
राइट। पिछले चैप्टर्स में उसने ईश्वर के साथ रेसलिंग की थी।
हाँ, और उसका नाम बदला गया। फिर अपने भाई ईसाओ के साथ एक बहुत ही इमोशनल रियूनियन के बाद उसने फाइनली एक शांति अचीव की है,
जो कि अपने आप में एक मिरेकल था।
बिल्कुल। वो वापस आता है और सेंट्रल इसराइल में शेकेम शहर के बाहर जमीन खरीदता है। उसने 100 चांदी के सिक्कों में हमोर के बेटों से ये जमीन ली।
हाँ।
और वहां एक वेदी एक ऑल्टर बनाता है जिसका नाम वो एल एलोहे इसराइल रखता है। सरफेस लेवल पे देखें तो लगता है कि फाइनली जेकब सेटल हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट और पीसफुल लग रहा है ना?
देखने में बिल्कुल वैसा ही लगता है। जमीन खरीदना और ऑल्टर बनाना एक क्लियर डिक्लेरेशन था कि जेकब अब एक नोमैडिक लाइफ नहीं चाहता।
राइट।
वो सेटल होना चाहता है, एक रिस्पेक्टेबल पड़ोसी बनना चाहता है, लेकिन यही वो कम्फर्ट जोन था जहाँ जेकब अपनी स्पिरिचुअल विजिलेंस को बैठा।
अच्छा, उसने गार्ड डाउन कर दिया।
एग्जैक्टली। और किसी भी बड़े मॉरल डिक्लाइन की शुरुआत हमेशा एक ऐसी ही कम्प्लेसेंट स्टेट से होती है। तूफान बाहर से नहीं आने वाला था।
तो कहां से आने वाला था?
तूफान उसके अपने कैंप के अंदर पनप रहा था।
बाप रे। और इस तूफान का एपिसेंटर बनती है जेकब की बेटी डायना।
हाँ, ये बहुत ही ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट है।
सोर्स टेक्स्ट बताता है कि डायना वहां की स्थानीय औरतों से मिलने उन्हें देखने जाती है। वहां शेखिम, जो हमोर का बेटा है और इस इलाके का हिवाइट राजकुमार है, वह डायना को देखता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है।
स्रोत बहुत स्पष्ट है कि ये एक वॉयलेशन था।
राइट। एक प्री मैरिटल रेप था। लेकिन उस ट्रेजेडी के तुरंत बाद कहानी एक अजीब मोड़ लेती है।
बिल्कुल वही चीज सबको हैरान करती है।
शेखिम डायना से शादी करना चाहता है। वो अपने पिता हमोर को भेजता है कि जाओ और जेकब से इस शादी का प्रस्ताव रखो। अब यहाँ जो जेकब का रिएक्शन है वह सच में चिलिंग है। उसे जब इस वायोलेशन का पता चलता है तो वह पूरी तरह शांत रहता है,
एकदम चुप।
हाँ, कोई गुस्सा नहीं, कोई आउटरेज नहीं। वो बस अपने बेटों के खेत से वापस आने का इंतजार करता है। उसका पूरा फोकस इस बात पर है कि पड़ोसियों के साथ उसका पीआर खराब ना हो, उसके बिजनेस रिलेशन स्टेबल रहे,
जो कि एक पिता के रूप में बहुत डिस्टर्बिंग है।
सीरियसली, वेट, तो क्या वो प्रैक्टिकली एक ऐसे सीईओ की तरह बिहेव कर रहा है जिसने एक बहुत बड़ी कंपनी तो बना ली, लेकिन जब उसके अपने घर में आग लगी है,
हाँ, जब बोर्ड मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं।
Exactly. उसकी अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ है तो वह सिर्फ अपनी पब्लिक इमेज और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बचा रहा है।
सही एनालॉजी है।
मैं वही सोच रही थी कि जेकब, जिसने पिछले चैप्टर में डायरेक्टली ईश्वर से युद्ध किया था, वो यहाँ इतना डरपोक और पैसिव क्यों है?
यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि द प्रिसाइज लैंग्वेज जो सोर्स मटेरियल हाईलाइट करता है।
क्या लैंग्वेज?
डॉक्टर मैथ्यूज पॉइंट आउट करते हैं कि जब टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है कि शीकम ने डायना को देखा और ले लिया, मतलब saw and took.
ओके.
ये वर्डिंग कोइंसिडेंस नहीं है, ये एग्जैक्ट वही भाषा है जो जेनेसिस 6 में नोहा के जल प्रलय या फ्लड से ठीक पहले के एक्सट्रीम भ्रष्टाचार और सिस्टमैटिक अब्यूज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की गई थी।
ओह वाओ, मतलब द सन्स ऑफ गॉड सॉ एंड टुक वाला रेफरेंस।
एग्जैक्टली, ये एक थियोलॉजिकल सिग्नल है कि सोसाइटी वापस उसी डार्क एज वाले करप्शन की तरफ जा रही है।
ये तो बहुत डीप कनेक्शन है।
और जहां तक जैकब की पैसिविटी की बात है, ये उसकी आत्मिक रेग्रेशन को दिखाता है। वह सर्वाइवल मोड में चला गया है।
सर्वाइवल मोड?
हाँ, वह एक अनजान टेरिटरी में है, माइनॉरिटी में है, और डरता है कि अगर उसने रिएक्ट किया तो ये कैनानाइट लोग उसे मिटा देंगे।
राइट.
उसने डर के आगे अपना मॉरल लीडरशिप सरेंडर कर दिया।
और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। जेकब की इस कैलकुलेटेड चुप्पी ने एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक खालीपन क्रिएट कर दिया।
और नेचर का रूल है, वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता।
सही कहा। उसके बेटों ने, स्पेसिफिकली सिमियन और लेवी ने, इस वैक्यूम को अपने गुस्से और धोखे से भर दिया। यहां मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है।
बिल्कुल।
हमोर और शेकेम जेकब के कैंप में आते हैं एक इकोनॉमिक समझौता लेकर। वो प्रपोज करते हैं कि हमारी आपस में शादियां होने दो, तुम हमारी जमीन पर रहो, बिजनेस करो, संपत्ति बनाओ।
एक प्योर कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक बहुत बड़ा ऑफर था।
हाँ, मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसा कुछ। लेकिन सिमियन और लेवी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने का नाटक करते हैं, पर एक कंडीशन रखते हैं।
और वही कंडीशन सबसे डेडली थी।
वो कहते हैं कि हमारा इंटरमैरिज तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे शहर के सभी पुरुषों का खतना, सर्कमसिजन हो जाए।
ये नैरेटिव का सबसे ट्विस्टेड और डार्क हिस्सा है।
आई कैन इमेजिन।
सर्कमसिजन को उन्होंने कंडीशन बनाया क्योंकि उन्हें पता था इसका असर क्या होगा, पर पहले हमें इस रिचुअल के वेट को समझना होगा।
हाँ, ये कोई नॉर्मल सर्जरी तो थी नहीं।
अब्राहमिक ट्रेडिशन में सर्कमसिजन कोई मामूली मेडिकल प्रोसीजर या कल्चरल प्रैक्टिस नहीं थी। ये ईश्वर और अब्राहम के बीच हुए इटर्नल कवेनेंट का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र निशान था।
राइट राइट।
टेक्स्टुअली ये 8वें दिन किया जाता था और ये आइडेंटिटी का कोर था, और शिकमाइट लोग इसके लिए तुरंत राजी हो गए।
उन्होंने सोचा भी नहीं
कि परिवार की जितनी भी संपत्ति है, जो पशु हैं, वह सब इवेंचुअली हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे।
हाँ, तो उनका ग्रीड उनकी रैशनैलिटी पर हावी हो गया।
एग्जैक्टली।
इस स्ट्रैटेजी की क्रुएलिटी को अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये वैसा नहीं है कि किसी करप्ट पॉलिटिशियन ने चैरिटी का पैसा गबन कर लिया।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा सिनिस्टर है।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो और एक पक्ष सेक्रेड रिलीजियस सीज फायर कॉल करे।
राइट।
वह प्रपोज करे कि आओ अपने सारे हथियार रख दो और हमारे साथ टेम्पल में घुटनों पर बैठकर प्रेयर करो। और जब सामने वाला पक्ष अनकंडीशनल फेथ के साथ पूरी तरह अनआर्म्ड और वल्नरेबल होकर प्रेयर के लिए सर झुकाता है, तब उनका मास स्लॉटर कर दिया जाए।
बिल्कुल सही एग्जांपल दिया।
इन बेटों ने सिर्फ मर्डर प्लान नहीं किया, उन्होंने अपनी ही फेथ के सबसे सेक्रेड सिंबल को, उस सिंबल को जो डिवाइन प्रॉमिस का हिस्सा था, एक बायोलॉजिकल वेपन में बदल दिया।
प्रिसाइसली, उन्होंने सेक्रेड को प्रोफेन बना दिया। ये स्पिरिचुअल ट्रीजन था।
बाप रे।
और इसका एग्जीक्यूशन उतना ही ब्रूटल था। तीसरे दिन जब फिजिकल पेन अपने एक्सट्रीम पीक पर होता है,
नहीं, जब उन्हें फीवर होता है और हीलिंग चल रही होती है।
एग्जैक्टली। जब शेकेमाइट पुरुष बेडरिडन थे और डिफेंड करने के काबिल नहीं थे, तब सिमियन और लीवी शहर में घुसते हैं
और उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा।
नहीं, उन्होंने सिर्फ शेकेम को नहीं मारा जिसने क्राइम किया था, उन्होंने हर एक पुरुष को मार डाला और पूरे शहर को लूट लिया।
वह इंसाफ नहीं कर रहे थे, वो जेनोसाइड कर रहे थे।
सही वर्ड यूज किया, जेनोसाइड। और इस सब के बाद जेकब का रिएक्शन और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है।
हाँ, जेकब का रिएक्शन सुनकर तो लगता है जैसे उसका मॉरल कंपास कंप्लीटली शैटर हो चुका है। वो अपने बेटों के पास आता है पर उन्हें इस मास मर्डर के लिए कॉन्फ्रंट नहीं करता।
वो सजा भी नहीं देता उन्हें।
कुछ भी नहीं। वो उनसे कहता है कि तुमने मुझे किनानाइट लोगों के बीच स्टेंच, मतलब एक बदबू बना दिया है।
उसका प्रायोरिटी देखो।
वही तो, उसका पूरा आर्ग्यूमेंट ये था कि हमारी संख्या कम है, अब आसपास के लोग इकट्ठे होंगे और मुझे मार डालेंगे। वह लिटरली एक मास मर्डर सीन के बीच खड़ा होकर अपनी पर्सनल सेफ्टी और अपनी इमेज की कंप्लेंट कर रहा है।
ये दिखाता है कि जेकब के पास अब कोई नैतिक आधार नहीं बचा था, और जब पिता का मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जाता है तो बेटे बिल्कुल अनहिंज्ड हो जाते हैं।
राइट।
उनका जवाब देखिए, उन्होंने पलट के जेकब से कहा, क्या उसे हमारी बहन के साथ एक प्रोस्टिट्यूट की तरह व्यवहार करना चाहिए था?
इस स्टेटमेंट में गुस्सा तो है,
गुस्सा है, जस्टिफिकेशन है, लेकिन एक बूंद पश्चाताप नहीं है। उन्होंने कन्विंस कर लिया था खुद को कि उनका एक्सट्रीम वायलेंस कंप्लीटली जस्टिफाइड था।
सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमारे पास एक ऐसी फैमिली है जहां पिता दरपोक और सेल्फ सेंटर्ड है, और बेटे मास मर्डर्स हैं जिन्होंने धर्म को वेपनाइज किया है।
यस।
अगर ये कोई नॉर्मल हिस्टोरिकल अकाउंट होता तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। इस फैमिली को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए थी और कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाना चाहिए था।
लॉजिक तो यही कहता है।
लेकिन यहाँ कहानी में एक मैसिव पिविट आता है। जब ह्यूमन स्ट्रक्चर्स पूरी तरह कोलैप्स कर जाते हैं, ईश्वर इंटरवीन करता है।
डिवाइन इंटरवेंशन।
ईश्वर जेकब को कमांड देता है कि यहाँ से निकलो, वापस बेथेल जाओ और वहां ऑल्टर बनाओ। बेथेल वही जगह है जहां जेकब की स्टोरी शुरू हुई थी, जहां उसने सोते हुए सीढ़ी वाला सपना देखा था।
पर बेथेल जाना कोई कैजुअल रोड ट्रिप नहीं थी। बेथेल का मतलब था ईश्वर की उपस्थिति में वापस आना।
तो वहां जाने की कोई स्पेसिफिक तैयारी करनी थी?
हाँ, और उस पवित्रता में एंटर करने से पहले एक मैसिव प्यूरिफिकेशन जरूरी था।
जेकब फाइनली कुछ लीडरशिप दिखाता है।
चलो किसी पॉइंट पर तो दिखाई।
वो अपने पूरे परिवार को आदेश देता है कि अपने कपड़े बदलो, क्लीन हो जाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी फॉरेन आइडल्स तुम्हारे पास है उन्हें दे दो।
राइट, फॉरेन आइडल्स। सुनने वालों को याद होगा कि रेचल ने अपने पिता लाबन के आइडल्स चुराए थे।
बिल्कुल।
और उनके कैंप में और भी मूर्तियां रही होंगी इन आसपास के लोगों की। जेकब इन सभी हाउसहोल्ड गॉड्स को लेता है और शीकम के पास एक ओक ट्री के नीचे दफना देता है। कहानी में ये पहला बरियल था।
तो ये सिर्फ मूर्तियां दफनाना नहीं था?
नहीं, ये सिर्फ फिजिकल आइडल्स को जमीन में दबाना नहीं था, ये अपने पास्ट को, अपनी प्रीवियस टॉक्सिक आइडेंटिटी को दफनाना था, ताकि वो बेथेल में एक क्लीन स्लेट के साथ जा सके।
लेकिन एक मिनट, मैं कुछ और सोच रही थी।
बताएं।
मुझे एक चीज यहाँ बहुत डिस्टर्बिंग लग रही है, और सुनने वालों के दिमाग में भी ये जरूर आएगा।
क्या बात है?
इन बेटों ने एक पूरे शहर को धोखे से स्लॉटर कर दिया, और ईश्वर उन्हें लाइटनिंग से स्ट्राइक करने या पनिश करने के बजाय उन्हें बेथेल भेज रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोर्स एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि ईश्वर ने आसपास के तमाम कैनोनाइट शहरों पर एक टेरर ऑफ गॉड डाल दिया,
एक सुपरनैचुरल पैनिक।
हाँ, जिससे किसी ने भी जेकब की फैमिली का पीछा नहीं किया, वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है।
राइट।
क्या ये लिटरली वैसा नहीं है कि एक हाईली इन्फ्लुएंशियल माता पिता अपने सीरियल क्रिमिनल बच्चों को हर बार सिस्टम से बचा लेते हैं, बेल आउट कर लेते हैं, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस ही नहीं करने देते?
अगर हम इसका कनेक्शन बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आपका सवाल बहुत वैलिड है। सर्फेस लेवल पर ये क्लियर इनजस्टिस लगता है।
लगता ही है।
लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज यहाँ एक बहुत प्रोफाउंड थियोलॉजिकल पॉइंट रखते हैं। ईश्वर जेकब और उसके बेटों को इसलिए प्रोटेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया है या उनमें कोई इनहेरेंट मेरिट बची है।
मेरिट तो ऑब्वियसली जीरो है,
वो माइनस में है। ईश्वर उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस वादे के कारण बचा रहा है जो उसने उनके दादा अब्राहम से किया था। डॉक्टर मैथ्यूज यहाँ साम 130 का रेफरेंस देते हैं।
उसमें क्या लिखा है?
साम कहता है कि अगर ईश्वर हमारे पापों का और हमारी फेलियर्स का रिकॉर्ड रखने लगे तो इस दुनिया में एक भी इंसान खड़ा नहीं रह सकता।
वाओ।
दिव्य योजना कर्मा पर आधारित नहीं है, वह ग्रेस पर आधारित है।
मतलब उन्हें टाइम मिल रहा है।
एग्जैक्टली। ईश्वर इस करप्टेड फैमिली को तुरंत मिटा नहीं रहा क्योंकि वह टाइम बाय कर रहा है, वह उन्हें स्पेस दे रहा है ताकि आगे चलकर उनके अंदर एक जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन, एक सच्चा पश्चाताप आ सके,
जो हम आगे देखते भी हैं।
हाँ, और हम जानते हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में, स्पेसिफिकली जोसेफ की स्टोरी में, यही मर्डरर्स पूरी तरह टूटेंगे और उनका हार्ट चेंज होगा। ग्रेस हमेशा सजा से बड़ी पिक्चर देखती है।
वाओ, तो ग्रेस बेसिक ह्यूमन जस्टिस सिस्टम की तरह इमीडिएट रेट्रीब्यूशन नहीं मांगती, वह लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन पर बेट करती है।
सही वर्ड पकड़ा आपने, रिहैबिलिटेशन।
ईश्वर उन्हें उनके हाल में नहीं छोड़ना चाहता था, तो अब वो बेथेल पहुंचते हैं। और बेथल पहुंचकर लगता है कि पूरी तरह से एक शिफ्ट आ गया है। वह सिर्फ लोकेशन चेंज नहीं थी, आइडेंटिटी चेंज थी
पूरी तरह से।
वहां ईश्वर दोबारा अपेयर होता है और फॉर्मली जेकब का नाम बदलकर इसराइल रखता है, जिसका मतलब है वो जो ईश्वर के साथ संघर्ष करता है।
और सबसे अहम बात, यहां ईश्वर अपने आप को एल शदाए यानी गॉड ऑलमाइटी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है
और जमीन और डिसेंडेंट्स का प्रॉमिस फॉर्मली रिन्यू करता है। एक तरह से पुराली जनरेशन और उनके तौर तरीकों का अंत हो रहा है।
बिल्कुल, और इस अंत को नैरेटिव बहुत ही फिजिकल तरीके से दर्शाता है,
मौत और दफने के जरिए।
हाँ, इस चैप्टर में चार प्रोमिनेंट बरियल्स होती हैं जो एक एरा के गुजरने का मार्क है।
चलिए उन बरियल्स को ट्रेस करते हैं।
पहला बरियल तो वही फॉरेन आइडल्स का था जो हमने ओक ट्री के नीचे देखा,
राइट, पास्ट को बरी करना।
उसके बाद दूसरा दफन होता है रिबेका की दाई देवोरा का। उसके बाद सबसे बड़ा इमोशनल ब्लो आता है, जेकब की सबसे पसंदीदा पत्नी रेचल, वह लेबर पेन में जाती है और 12वें बेटे बेंजामिन को जन्म देती है और उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है।
ओह, ये बहुत ट्रैजिक है। ये तीसरा बरियल था।
और फाइनली चैप्टर के एंड में ओल्ड पेट्रियार्क आइजैक की मौत होती है और जेकब और ईसू मिलकर उसे दफनाते हैं,
जो खुद में एक बहुत सिंबॉलिकल मोमेंट है।
हेमा, ये चार बरियल्स मिलकर इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं कि पितृसत्ता यानी ओरिजिनल पेट्रियार्क्स का टाइम अब परमानेंटली ओवर हो चुका है।
एक एंटायर जेनरेशन लिटरली ग्राउंड में जा चुकी है, राजवंश का नेता बदल रहा है। ये बिल्कुल किसी रॉयल फैमिली के चेंजिंग ऑफ द गार्ड की तरह है।
सही कहा।
जहां पुराने राजा और रानियां स्टेज से हट रहे हैं और स्पॉटलाइट अब इन 12 बेटों पर आने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नए एयर्स अभी तक सुधरे नहीं है।
वो तो अपने ही डाउनफॉल का इंतजाम कर रहे थे।
सीरियसली, जैसे ही अटेंशन उन पर आती है, रूबिन जो कि सबसे बड़ा बेटा और फर्स्ट बॉर्न था, वो अपनी सौतेली माँ बिल्हा के साथ इंसेस्टुअस फिजिकल रिलेशन बनाता है।
ये भी एक पावर प्ले था।
वह अपनी पावर असर्ट करने के लिए स्टेप लेता है, लेकिन इस एक एक्ट की वजह से वह फर्स्ट बॉर्न होने का अथॉरिटी और ब्लेसिंग हमेशा के लिए खो देता है।
सिमन और लेवाय पहले ही मैस मर्डर करके डिस्क्वालीफाई हो चुके थे
और अब रूबिन भी आउट हो गया। द एंटायर लेगेसी इज बीइंग टॉर्च्ड बाय द न्यू जनरेशन,
दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग इट।
और फिर अचानक सोर्स टेक्स्ट चैप्टर 36 में फोकस शिफ्ट करता है ईसा के वंश एडोमाइट्स पर। वहाँ एक पूरी लिस्ट है उनके ट्राइबल चीफ्स और किंग्स की।
हाँ, और ये लिस्ट बहुत स्पेसिफिकली लिखी गई है।
वो दिखाते हैं कि एडोमाइट्स ने कितनी जल्दी अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया। उनके राजा इज़राइलाइट किंग्स के आने से सदियों पहले वहाँ रूल कर रहे थे। तो नैरेटिव अचानक हमें इज़राइल के स्ट्रगल से हटाकर ईसा की सक्सेस क्यों दिखाने लगता है?
दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ सक्सेस।
कैसे?
ईसा की लिनियज एक परफेक्ट फॉइल है इज़राइल के स्पिरिचुअल स्ट्रगल के लिए।
यस,
ईसा ने फिजिकल पावर और मटीरियल सक्सेस बहुत तेजी से अचीव कर ली। उसके बेटे जल्दी चीफटन बन गए, किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया।
वर्ल्डली टर्म्स में देखा जाए तो ईसा जीत रहा था,
लेकिन डिवाइन प्लान क्विक मटेरियल सक्सेस में इंटरेस्टेड नहीं था। इज़राइल की कहानी डिले की, पेशेंस की और डीप कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है।
मतलब जल्दी मिलने वाली चीजें उतनी ड्यूरेबल नहीं होती।
एग्जैक्टली, ईसा को राज मिला पर इज़राइल को प्रॉमिस मिला। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि पहले तीन बेटे रूबेन, सिमियन, लेवाय अपने ही एक्शन से डिस्क्वालिफाई हो गए,
तो अगला नंबर किसका है?
टेक्स्ट सबकॉन्शियसली हमारा फोकस चौथे बेटे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। वो बेटा है जूदा।
जूदा,
क्योंकि भले ही अभी सब कुछ मेसी लग रहा हो, आगे चलकर इस जूदा के लीनियत से ही एंशियंट इसराइल का सबसे महान नेता किंग डेविड आएगा
और अल्टीमेटली
उसी ब्लड लाइन से जीसस क्राइस्ट आएंगे।
वाओ,
तो टेक अवे क्लियर है, ह्यूमन करप्शन, केओस और डिले के बावजूद ईश्वर की ओवरआर्चिंग योजना कभी डिरेल्ड नहीं होती, वो कॉन्स्टेंटली फॉरवर्ड मूव कर रही है।
यह पूरा सीक्वेंस ही सच में माइंड बेंडिंग है। हम इस पूरी चर्चा को अब रैप अप कर रहे हैं और जो चीज मेरे दिमाग में सबसे स्ट्रांगली रेजोनेट करती है वह यह है कि ह्यूमन प्रोग्रेस और डिवाइन पर्पस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते।
स्ट्रेट लाइन तो कहीं भी नहीं होती यहाँ।
सही बात है। हमने देखा एक ऐसी फैमिली जहाँ पैसिविटी ने वायलेंस को जन्म दिया। हमने देखा धोखा, सेक्रेड रिचुअल्स का वेपनाइजेशन, मास मर्डर और एक्सट्रीम मॉरल डीके,
एक पूरा नैतिक पतन।
लेकिन इन सब के बाद भी स्टोरी कोलैप्स नहीं हुई। नैतिक फेलियर्स कितनी ही डार्क क्यों ना हो, एक हायर पर्पस हमेशा एशेस से बाहर निकल आता है।
बिल्कुल।
उनका प्योरिफिकेशन उनके पास्ट को दफनाने से शुरू हुआ और ग्रेस ने उन्हें एक लंबा रास्ता दिया सुधरने के लिए।
ये नैरेटिव इस बात का प्रूफ है कि उम्मीद कम्प्लीटली किसी की गुडनेस पर आधारित नहीं है।
अगर होती तो सब कब का खत्म हो गया होता।
हाँ, फिर तो कोई बचता ही नहीं। ये उम्मीद ईश्वरीय परसिस्टेंस पर आधारित है। इंसान गिर सकता है, सोसाइटी करप्ट हो सकती है, लेकिन रिडेम्पशन का चांस हमेशा रहता है अगर उस प्योरिफिकेशन को, उस ग्रेस को एम्ब्रेस किया जाए।
इस डीप डाइव को एंड करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी थॉट छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने एनालाइज किया कि कैसे एक हाईली सेक्रेड धार्मिक प्रतीक को, जो लाइफ और कवेनेंट का सिंबल था, प्रतिशोध लेने और एक प्योर शहर को एक्सटर्मिनेट करने के लिए वेपनाइज किया गया।
बहुत डार्क रियलिटी है।
इस ब्रूटल रियलिटी को दिमाग में रखते हुए सोचिए, आज के आधुनिक समाज में, हमारी मॉडर्न पॉलिटिक्स या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में, हम कितनी बार न्याय, स्वतंत्रता या धर्म जैसे एब्सोल्यूट सीक्रेट शब्दों को एक मुखौटे की तरह पहनते हैं ताकि अपने छिपे हुए विनाशकारी इरादों को अंजाम दे सकें। सोचिए इस पर, ध्यान रखिए और सुनते रहिए।